26 दिन, महीने और वर्ष एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ऐसे दौड़ रहे थे जैसे छोटे छोटे बालक खेलने के लिए जाते हैं। मुझको उनकी गणना करने के लिए समय ही नहीं मिलता था। अपने और सुप्रिया के बालकों की देखभाल करने में ही मेरा अधिकतर समय बीत जाता था। मेरे पास इतने सुख स्वयं दौड़ आए थे कि मैं यह भूल गई थी कि मैं एक सारथी कन्या हूँ। राजभवन के सभी कौरव योद्धा अंगरागी के रूप में सादर मेरा सम्मान करते थे, लेकिन कभी कभी एक बात मुझको व्याकुल कर देती थी। मेरे सत्यसेन दादा अभी अविवाहित थे, अवस्था में वह मुझसे बड़े थे, इसीलिए इस विषय में आमने सामने तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती थी, न विचार विमर्श कर सकती थी। अंगराज को भी उसके विवाह के विषय में मैंने कभी याद नहीं दिलाई थी, क्योंकि अपने भाई के बारे में मैं उनसे कुछ मांग करूं यह मुझको स्वीकार नहीं था। लेकिन मेरा मन मुझसे कह रहा था कि एक दिन स्वयं अंगराज ही भैया के विवाह की चर्चा अवश्य करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन वे मेरे हाथ में मंगल अक्षत देते हुए बोले, ये किसके मंगल अक्षत हैं बताओ तो जाने। 2 का अंक अशुभ लगता होगा, इसीलिए आप तीसरा विवाह करने जा रहे होंगे, मैंने परिहास करते हुए कहा। नहीं, मेरा तीसरा विवाह तो बहुत पहले हो चुका है, वे भी उसी सहजता से बोले। यह सुनकर क्षण भर को मेरा हृदय धक से रह गया। मैंने घबरा कर पूछा, तीसरा विवाह किसके साथ? देखो वृषाली, तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, सुप्रिया तीसरी, फिर पहली भागवती कौन है? मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा। धनुर्विद्या, वे ठठाकर हंसते हुए बोले। मेरे हाथों में लगे अक्षत की उंगली करते हुए वे बोले, ये अक्षत मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे सत्यसेन दादा के लिए है। वृषाली, शोण के विवाह के लिए तुम दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन अपने भाई के विवाह के संबंध में तुमने भूल कर भी मुझसे कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अंगरागी तो हूँ ही, लेकिन एक स्वाभिमानी भाई की बहन भी हूँ। मेरे पास आकर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वे बोले, वृषाली, सुप्रिया तुमसे अधिक सुंदर है, परंतु तुम्हारी यह युक्तिपूर्ण कथन वह कभी नहीं कह सकती। कहाँ से सीखे आई हो यह सब? आपने धनुर्वेद किससे सीखा है? अपने गुरु से। उनका नाम क्या है? नाम नहीं बता सकता। तो फिर मैं भी अपने गुरु का नाम नहीं बता सकती। देखो, तुम्हारे युक्तिपूर्ण उत्तर फिर शुरू हो गए। मैं हाथों में लगे अक्षतों की ओर देखते हुए चुप हो गई। प्रत्येक अक्षत पर मुझको मौर बांधे हुए सत्यसेन दादा ही दिखाई दे रहे थे। अपनी छोटी बहन के लिए उस विशाल बना भाई ने कष्टों के पर्वत सिर पर रख लिए थे। अपने नाम के अनुसार ही वह सत्य के लिए प्रयत्न करता हुआ था। पुरोहित जी ने शुभ दिन बताया था। उस दिन बड़ी धूमधाम से मेरे भाई का विवाह हस्तिनापुर के एक सारथी कन्या से हो गया। महाराज दुर्योधन के सारथी होने के कारण भैया का विवाह में वैभव की कोई कमी नहीं रही। उनकी अर्धांगिनी का नाम था पुष्पावती। उस विवाह के एक महीने के भीतर ही महाराज दुर्योधन को एक कन्या हुई। नगर में चारों ओर दीपक जलाकर नगरजनों ने अपनी राजकन्या का स्वागत किया। पुरोहित ने उसका नाम सुदर्शना रखा। सुदर्शना सुंदर थी। राजभवन में युवराज लक्ष्मण, राजकन्या सुदर्शना, मेरे और सुप्रिया के पुत्र मीनाक्षी आदि अनेक छोटे छोटे बालक उद्यान के पुष्पगुच्छों की तरह आनंदपूर्वक बढ़ने लगे। उनकी बाल क्रीड़ाएं राजभवन में भी नहीं समाती थी। स्वर्ग के देवगण हस्तिनापुर से ईर्ष्या तो नहीं करने लगेंगे, कभी कभी यह संदेह मेरे मन में झांक जाता था। 27 बीच बीच में कानों में से टकराने वाली इंद्रप्रस्थ की चर्चाएं सभी के मन में उत्सुकता जागृत करने लगी। पांडवों ने खांडव वन में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर इंद्रप्रस्थ को उस राज्य की राजधानी बना दिया। राजधानी के नाम से पड़ोस के राज्य उस राज्य को इंद्रप्रस्थ का राज्य ही कहने लगे। हस्तिनापुर की अपेक्षा इंद्रप्रस्थ का ही डंका चारों ओर बज रहा था। राज्य केवल भव्य भवनों और विपुल नागरिकों का ही नहीं चला करते, राज्य चलाने के लिए संपत्ति की भी आवश्यकता होती है। यह संपत्ति पांडवों ने कब और कहां से प्राप्त की, इस संबंध में हस्तिनापुर में सभी को बहुत कौतूहल था। भीम और अर्जुन ने अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए सतत पड़ोसी राज्यों को पदाक्रांत करने में पराक्रम की सीमा पार कर दी। पराजित राज्य उनको कर देने लगे और इस प्रकार उनका इंद्रप्रस्थ संपन्न होने लगा, सैन्य संख्या बढ़ने लगी। अचानक एक दिन पांडवों का राजदूत हस्तिनापुर में आ पहुंचा। वह पांडवों की ओर से भुर्ज पत्र का राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर आया था। वासंतिक पूर्णिमा को पांडव विशाल यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे। उस यज्ञ के लिए वे पितामह भीष्म का शुभाशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। इस निमंत्रण के पीछे ही पीछे पांडवों के पुरोहित धौम्य ऋषि भी स्वयं हस्तिनापुर में आकर निमंत्रण के संबंध में आग्रह कर गए थे। स्वयं युवराज युधिष्ठिर देश देश में 5 वर्ण कुंभ लेकर घूम आए थे। इन कुंभों में से वितस्ता, पुरुषणी, गंगा, यमुना, सिंधु, मंदाकिनी, अलकनंदा, इरावती, सरयू, चरमणवती आदि अनेक पवित्र नदियों का जल इंद्रप्रस्थ ले आए थे। पांडवों के इंद्रप्रस्थ में राजभवन के सामने होकर बहने वाली इक्षुमती नदी के जल में इन पवित्र नदी के जलों को मिलाकर यज्ञ के कार्यों में प्रयुक्त करना था। इंद्रप्रस्थ इक्षुमती और यमुना के संगम पर था। राजभवन के समय इक्षुमती के दूसरे किनारे पर विशाल प्रांगण में यज्ञ मंडप बनाया गया था। उसके चारों ओर निमंत्रितों के लिए विश्राम गृह और भोजनागार सुसज्जित कर दिए गए थे। ये सब समाचार हस्तिनापुर में तेजी से फैल रहे थे। युवराज अर्जुन और भीम देश देश में अपने यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए घूम रहे थे। जहाँ देखो वहाँ यज्ञ की चर्चा होने लगी थी। मेरा भी कौतूहल बढ़ने लगा। इंद्रप्रस्थ कैसा बसाया है, यह कम से कम एक बार तो देख ही लेना चाहिए, मेरा मन यह चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था, उचित भी नहीं था। इस दीर्घ समय में पांडवों ने चारों दिशाओं में दिग्विजय की थी। गाड़ियां भर भर कर अपरिमित धनराशि लाकर इन्होंने इंद्रप्रस्थ का भंडार पूर्ण किया था। महल में पांडवों के विषय में जो चर्चा चलती थी वह सुनकर यह सारी जानकारी मुझे हो गई थी। दिग्विजय में उन्होंने दो ही राज्यों पर आक्रमण नहीं किया था, एक मथुरा और दूसरा हस्तिनापुर। वैसे यह इंद्रप्रस्थ का पाला ही निमंत्रण नहीं था। पांच पतियों से द्रौपदी को पांच पुत्र हुए थे। प्रत्येक पुत्र के नामकरण के अवसर पर राजमाता कुंती देवी द्वारा मुझको विशेष निमंत्रण भेजा गया था, परंतु महाराज को अच्छा नहीं लगेगा यह सोचकर हर बार मैंने कुछ न कुछ बहाना बनाकर इंद्रप्रस्थ जाना टाल दिया था। लेकिन प्रत्येक युवराज का नाम क्या क्या रखा गया था इसका पूरा पता मैंने अच्छी तरह लगा लिया था। द्रौपदी को युवराज युधिष्ठिर से, प्रतिविंध्य भीमसेन से, सूतसोम अर्जुन से, श्रुतकीर्ति नकुल से, शतानिक और सहदेव से, श्रुतवर्मा ये पांच सुंदर पुत्र प्राप्त हुए थे। परंतु इन सबसे ही एक अलग प्रकार का अद्भुत वर्णन हमने अभिमन्यु के बारे में सुना था। अभिमन्यु श्रीकृष्ण की सुभद्रा नामक भगनी का अर्जुन पुत्र था और अपने मामा की तरह ही सुगढ़ और नीलवर्णी था। पांडवों ने अपनी सुविधा के लिए वैवाहिक जीवन के संबंध में एक नियम बनाया था। असावधानी के कारण अर्जुन ने उसको भंग कर दिया, इसलिए उसको 12 वर्ष का लंबा वनवास स्वीकार करना पड़ा। इस वनवास काल में ही उन्होंने रायवतक पर्वत पर रहकर द्वारिका से श्रीकृष्ण की भगनी का हरण किया था। वनवास के बाद युवराज अर्जुन सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर ही इंद्रप्रस्थ लौटे थे। एक संयोग पर मुझे सदैव बड़ा आश्चर्य होता था। मेरा नाम विशाली था, अर्जुन की पत्नी का नाम पांचाली। मेरी सौत सुप्रिया थी और पांचाली की सौत सुभद्रा। इन नामों में कहीं कुछ गूढ़ समता अवश्य थी। रासु यज्ञ के लिए पांडवों के सभी लोग अथक प्रयत्न कर रहे थे। धौम्य ऋषि ने स्वयं मुझसे मिलकर यह कहा कि राजमाता कुंती देवी ने बड़े आग्रह से आपको बुलाया है, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि निमंत्रण के संबंध में महाराज को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि वह उनको अच्छा नहीं लग सकता है। सुदामन का वध कर अर्जुन ने हम दोनों के प्रति घोर अपराध किया था। बातों के प्रभाव में धौम्य ऋषि ने एक दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें भी बता दी। खांडव वन के अरण्य को चलाते समय अग्नि और अर्जुन में दारुण युद्ध हुआ था। इस युद्ध से संतुष्ट होकर अग्नि ने अर्जुन को गांडीव नामक धनुष और दो अक्षय बाणों के तरकश दिए थे। श्री कृष्ण को एक तेजस्वी सुदर्शन चक्र दिया था। जरासंध के मगधराज से भी हाल ही में लौटे हुए युवराज भीमसेन ने राक्षसराज वृषपरवा से एक दिव्य गदा भी प्राप्त कर ली थी। अर्जुन ने तो उस दिव्य धनुष के बल पर ही दिग्विजय का कार्य पूरा किया था। इंद्रप्रस्थ के ये सारे समाचार सुराज के संबंध में कौतूहल जागृत कर रहे थे। एक निबिड़ अरण्य जैसा समृद्ध राज्य में रूपांतरित हो गया था। इस पर सभी को महान आश्चर्य हो रहा था। 28 इसी बीच मगध देश स्थित हस्तिनापुर के गुप्तचर ने एक अविश्वसनीय सूचना लाकर राजभवन के सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। उसको सुनते ही महाराज तो बहुत अधिक अस्वस्थ हो गए। जिस समय एक दास ने आकर उनको यह समाचार दिया, उस समय वे वृषसेन को द्वंद्व सिखा रहे थे। वे उसको बाहुकंटक का कठिन दाव समझा रहे थे। आने वाला 10 मगधों के राज्य राजा के वध की सूचना लेकर आया था। सुनते ही वृषसेन को जीव काते हुए छोड़कर महाराज उस दास के पास गए और उसके कंधों को झकझोरते हुए उन्होंने पूछा, उस विख्यात जरासंध को किसने मारा है, बोल किसने? युवराज भीम ने उसने घबरा कर उत्तर दिया, अकेले ही असंभव है। उस समय श्रीकृष्ण भी वहां उपस्थित थे। उसका उत्तर सुनते ही महाराज स्तब्ध हो गए। दास चला गया, पीठ पीछे दोनों हाथ बजा कर न जाने किस विचार में डूबे हुए वे इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। मैंने वृषसेन से पूछा, वृषु पिताजी ने जो दाव सिखाया है वह उनको करके दिखाएगा, तात क्या मेरी बराबरी के हैं? चित्रसेन या लक्ष्मण को ला मेरे सामने, तब मैं उसको दिखाऊंगा अपना बाहुकंटक। वह बाहुकंटक नहीं कह पाता था। मैंने सोचा कि महाराज कौतूहल से उसको उठा लेंगे और टंकट नहीं बांवरे बाहुकंटक कहते हुए उसके मस्तक का अवग्रहण करेंगे, लेकिन वे अपने ही विचारों में डूबे हुए थे। जरासंध के वध से उनको कोई बात खटकी अवश्य थी। किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? मैंने उनको सचेत करने के लिए कहा। वे एकदम रुक कर बोले, श्री कृष्ण की सो क्यों? आखिर श्री कृष्ण ने जरासंध का अंत कर ही दिया, इसलिए आपको शायद बात अच्छी तरह नहीं सुनी। जरासंध का वध श्री कृष्ण ने नहीं किया, श्री कृष्ण का उस जरासंध वध से क्या प्रयोजन? भीम ने मारा है उसको। प्रयोजन श्री कृष्ण का ही था। जिस कंस का श्री कृष्ण ने वध किया था वह कंस जरासंध का जामाता था। अपने जामाता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने विशाल सेना लेकर अनेक बार मथुरा पर आक्रमण किया। उसके आक्रमणों से उकताकर श्रीकृष्ण को अंत में मथुरा छोड़कर भाग जाना पड़ा पश्चिम में द्वारिका को, इसीलिए उन्होंने जरासंध का अंत करवा दिया होगा। इंद्रप्रस्थ का यज्ञ मथुरा मुक्ति के आनंद के लिए ही हो रहा है। ऋषारि, मुझको उस यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इंद्रप्रस्थ जाऊंगा। मेरा निमंत्रण कि उनका जाने का निश्चय करना मुझको कुछ विचित्र सा लगा, परंतु मैंने कहा कुछ नहीं। उनके दृढ़ स्वभाव को मैं जानती थी, चाहे निद्रा में ही क्यों न निकले हो, लेकिन मुख से निकले हुए शब्द को वे सत्य कर दिखाते थे। जरासंध कांत करने वाले श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हैं शायद आप। विशाली, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है यह तुमने सिद्ध कर दिया है, वह कारण तो है ही, पर सच पूछो तो जरासंध के सेनापति चेदिराज शिशुपाल से मैं उस द्वंद के विषय में सविस्तार जानकारी पूछूंगा। भीम ने उसको किस दाव से मारा यह मैं भी जानना चाहता हूँ। द्वंद से उनको अतिशय प्रेम था। वे सदा कहते द्वंद का अर्थ है स्पष्ट रूप से शक्ति सी सीधी कसौटी। 29 पूर्णिमा से एक दिन पहले सभी कौरव योद्धाओं ने इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर दिया। महाराज दुर्योधन ने यह प्रयत्न किया कि पांडवों के यज्ञ में कोई न जाने पाए, लेकिन पितामह भीष्म ने इस संबंध में प्रारंभ से ही कठोर रुख अपनाया। उन्होंने सबसे स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम लोग वृद्धों का मान रखना चाहते हो तो सबसे वृद्ध गुरु के रूप में मैं तुमको यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन आज्ञा मानकर केवल आने से ही काम नहीं चलेगा। उस यज्ञ में मैं जिस काम के लिए जिसको कहूँगा वह काम प्रत्येक को करना ही पड़ेगा, यह मेरी इच्छा नहीं बल्कि आज्ञा है। और उनकी आज्ञा अपनी हट कभी न छोड़ने वाला महाराज दुर्योधन पितामह के आगे कुछ भी न कह सके। पितामह के त्याग और पराक्रम से सभी परिचित थे, मन ही मन भले ही झुंझलाते थे, परंतु पितामह की आज्ञा का पालन तो सबको करना था ही। अंगराज भी सबके साथ इंद्रप्रस्थ से जाने लगे। जाते समय उनकी पंचारती उतार कर मैंने उनसे कहा, आपको भी जाना चाहिए, यह पितामह की आज्ञा नहीं है, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर आपसे कौन कर रहा है आग्रह किसी का नहीं, लेकिन मुझको जाना आवश्यक है। वहां मथुरा से श्री कृष्ण आने वाले हैं, यज्ञ की अपेक्षा उनको पुनः देखने की मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा ही निश्चय है। उनके परशु के फल की तरह विशाल भाल पर मैंने कुमकुम तिलक लगाया। उस तिलक से उनकी मुद्रा नितांत सुंदर लगने लगी। अपने माता पिता के चरण धूलि अपने सिर से लगाकर अपने हस्तिदंत वर्ण के घोड़ों के रथ पर बैठकर वे यज्ञ के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण के दर्शन करने की उत्कट इच्छा है। श्री कृष्ण के दर्शन से उनको न जाने कौन सा समाधान मिलने वाला था। उनके उस कथन से मेरी भी इच्छा हुई कि श्री कृष्ण को एक बार अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पति का समाधान था वही मेरा समाधान था। स्त्री का जीवन पति के चरणों पर भक्तिभाव से और श्रद्धा से समर्पित किया हुआ कमल पुष्प होता है। पति का सुख ही उसका सुख होता है।